السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आप सबको रमज़ान का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार हम दाखिल हो गए इस प्यारे महीने में, जिसमें हम बहुत सारी नेकियां अपने दामन में भर सकते हैं, अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। और जिस महीने की आरज़ू हमारे दिल में थी और हम दुआएं कर रहे थे इतने अरसे से कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी से इस महीने में दाखिल हुए होंगे और सब अभी से ये नियत कर लें कि इस महीने में हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारी बख्शिश भी हो जाए और अल्लाह ताला का कुर्ब भी हमें हासिल हो जाए। अपने तमाम कामों को आप थोड़ा सा इस महीने में ज़रा पीछे रख दें और सिर्फ़ ज़रूरत के कामों को आगे रखें। बाकी सब पार्टी टाइम वगैरह बाकी वक्त में होता रहेगा, इस महीने के लिए पार्टी टाइम को भी ज़रा अवॉइड करें। तो तैयार हैं आप सब तेज़ भागने के लिए? याद रखें, ये दौड़ जो आज शुरू करनी है तो बीच में थक के या उकता के बैठ नहीं जाना, बल्कि दौड़ते रहना है जब तक ये शव्वाल का चांद नज़र नहीं आ जाता। तो इसका कोई लम्हा ये 30 दिनों में कम कीमती नहीं है, सभी कीमती औकात हैं। और इस रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला हमारा एक और प्रोग्राम आप देखेंगे कि आज की नेकी के इस सेशन में मैं आपको इस्लाम के एक अहम तरीन रुकन नमाज का तर्जुमा और तशरीह इंशाअल्लाह ताला बताऊंगी। नमाज जो है वो, जैसे आप जानते हैं, इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उनमें ईमान के बाद अहम तरीन इबादत का नाम है। नमाज इतनी जामे इबादत है कि तमाम इबादतों का मजमू है। एट अ टाइम, यानी आप सना भी कर रहे हैं, आप हमद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं, क़याम रुकू और सजदा भी करते हैं। और फिर नमाज में जो कलिमात और दुआएं हैं वो भी इतनी जामे हैं कि उनमें सारी खैर जमा हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप सूरह फातिहा को ही ले लें, उसमें दुआ भी है और पूरे कुरान का नचोड़ है। तो हम इंशाअल्लाह ताला नमाज के फरीजे को अच्छे से समझेंगे और शुरू से आखिर तक इसका तर्जमा भी सीखेंगे और तशरीह भी। ये क्यों इतना अहम है? इसलिए कि जब ये मालूम होगा तो हम शौक से नमाज अदा करेंगे, नमाज में हमारा दिल लगेगा। और चूंकि हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हमें हासिल हो, तो हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा सबसे ज़्यादा मेरे से करीब होता है फ़राइज़ अदा करने से। तो अल्लाह ताला के अगर करीब होना है, मुकर्रबीन में शामिल होना है, तो अपने फ़राइज़ को अच्छा करना है, और टॉप ऑफ द लिस्ट नमाज आती है। हम लोग आज तक नमाजें तो पढ़ते रहे, मगर हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने नमाज को कभी समझा भी है, उसकी तशरीह भी सीखी है? तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन दिनों में अपनी नमाज को बेहतर करने पे तवज्जो देंगे। जहाँ पे हम और भी नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो ये ना हो कि फ़राइज़ की क्वालिटी हमारी कम हो, हमारे फ़राइज़ जिनके ज़रिए हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे वो बेहतरीन होने चाहिए। और इंशाल्लाह आज एंड में मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगी जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, उसकी हमदो सना करने के लिए ऐसी दुआ है, ऐसा जिक्र है कि अल्लाह ताला की कुल मखलूकात मजमूई तौर पे जितनी हमदो सना करती है वो इतने अल्फाज में आप इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नमाज से। नमाज है क्या? नमाज दरअसल अल्लाह ताला से हम कलामी है, बात करना है। आपने वो हदीस सुन रखी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। तो दरअसल हम अल्लाह ताला के करीब आसमानों पे जा तो नहीं सकते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, मगर इस उम्मत को अगर मेराज चाहिए तो उसका तरीका क्या है? नमाज। और नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार है। और अल्लाह ताला ने ये इसीलिए 5 दफा दिन में फर्ज की है कि हम इसके जरिए अल्लाह ताला से बातचीत करें। ऐसा नहीं कि हमें कोई मुश्किल में वो डालना चाहता है, बल्कि सुबह दोपहर शाम वो चाहता है कि हम उससे हम कलामी करें। खुद सोचें, रब्बे कायनात वो है कि उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, कुल कायनात उसकी तस्बीह कर रही है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तस्बीह कर रही है उसकी जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। तो उसको हमारी जरूरत नहीं, जो एक नन्ना सा जर्रा जिसको इंसान कहते हैं, इस प्लेनेट अर्थ पे जो रहने वाला है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है इस लामहदूद कायनात में, उससे वो कहता है कि तुम मेरे सामने आके खड़े हो और मुझसे बात करो, सोने जाने से पहले भी बात करो, जब तुम सुबह को उठो तो सबसे पहले मुझसे बात करो, और जब अपने कामों में भाग दौड़ करते करते दिन गुजार रहे हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया करो और मेरे सामने खड़े हो जाया करो और सुकून पा लिया करो मेरे आगे झुक के और अपनी सारी टेंशन्स मुझे दे के। और जब सूरज ढलने लगे, दिन गुजर रहा है, और इस एहसास से दिल बैठने लगे कि सारा दिन चला गया और अब अंधेरा छा रहा है, तो मेरी तरफ आ जाया करो, इसलिए कि मेरी जात से, मेरी याद से तुम्हें सुकून हासिल होगा। तो नमाज पूरी की पूरी देखा जाए तो मोहब्बत का इजहार है जो बंदा अपने रब से करता है। यूं लगता है एक इंसान हाथ बांधे खड़ा है, बाअदब, नजरें झुकी हुई है, और ऐसा लगता है जैसे कह रहा हो कि नजर भी उठाऊं तो कैसे कैसे उठाऊं तेरे आगे, सारी दुनिया मैंने पीछे कर दी अल्लाह अकबर कह के, हाथ उठाए तो जैसे सारी दुनिया पीछे फेंक दी, मैंने भुला दिया हर एक को, सिर्फ एक तेरी जात है जो मेरे दिल में है, जिसकी याद है मेरे दिल में, लबों पे तेरी हम्द का तराना है, और सोचों में सिर्फ तू है। फिर जब खड़े खड़े चैन नहीं आया तो बंदा झुक जाता है उस रब के आगे और उसकी तस्बीह बयान करता है, उसकी अजमत बयान करता है, और फिर यही काफी नहीं समझता। जब ये बयान कर लेता है तो बेकरार होके खड़ा हो जाता है ये कहते हुए, सुन ली तूने मेरी सदा, तारीफ सारी तेरे लिए ही है, तूने मेरी बात सुन ली, मुझ कमजोर बेबस इंसान की बात सुन ली, और फिर खड़ा होता ही है तो बेचैन होके, बेकाबू होके उस रब के आगे गिर जाता है, अपने सारे वजूद को गिरा देता है, अपनी पेशानी उसके आगे जमीन पे रख देता है, जहां वो सबसे करीब होता है। सजदा ही वो जगह है जिसके जरिए अल्लाह ताला फरमाता है वस्जुद वक़तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा, तो इंसान उसके करीब हो जाता है। तब वो ऐसे ही होता है जैसे अल्लाह ताला के कदमों में उसने अपना सर रख दिया। और वो बेख्तियार उस रब की बड़ाइयां बयान करने लगता है, सुबहान रब्बी अल आला, मेरी क्या हैसियत, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मेरी पेशानी जमीन पे पड़ी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं और बड़ाई तो सारी ही तेरे लिए। मेरा वजूद, मेरी अकल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, सब कुछ तेरे आगे झुक गई। मैं गिरी हुई हूं तेरे आगे, पस्त हूं तेरे आगे, नीची हूं तेरे आगे, हकीर हूं तेरे आगे। मेरा ये चेहरा जो इज्जत की अलामत है, वो झुका हुआ है तेरे आगे, तेरे कदमों में पड़ा हुआ है, और मेरा कोई हाल नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो इससे भी ज्यादा हकीर थी, मगर इससे ज्यादा कोई और हालत नहीं जिसमें मैं गिर के अपनी हकीकत तेरे आगे रख सकूं। तो मैंने अपना सारा वजूद ही गिरा दिया। तू मुझ नातवां को देख और मुझ पे तरस खा ले। मैं तेरी बड़ाइयां बयान करने के बाद अपनी हाजतें तेरे आगे रखती हूं, अपना दुख अपना गम तुझे ही सुनाती हूं। ये करके फिर इंसान उठकर बैठ के जरा सांस लेता है, और फिर अभी दिल भरा नहीं, फिर वो झुक जाता है, फिर वो कहता है, ये मेरे आंसू मेरे दिल का हाल बयान करते हैं। फिर उसका दिल करता है कि खूब खूब उसकी बड़ाइयां बयान करे, उसकी हमद बयान करे। जब वो ये कर लेता है तो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर उससे बातें करने लगता है, निगाहें फिर झुकी हुई, फिर आजजी, सर नीचे। फिर उसके बाद उसी तरह झुकता है, उसी तरह गिर जाता है जमीन पे, फिर उठ के बैठ जाता है। अब बैठ के अपना हाले दिल उस रब को सुनाता है और उससे फिर मांगता है। और जब मांग चुकता है तो उसके बाद वो बंदा जो सारी दुनिया को भूला हुआ था नमाज में, अब सलाम फेरता है और सबको सलाम करके वापस इस दुनिया में आता है। वो तो कहीं और ही पहुंच चुका था, रब के आगे खड़े खड़े उसको पता ही नहीं था वो कहाँ है। उसका नाता इस दुनिया से टूट चुका था और उसका कनेक्शन कहीं और जुड़ा हुआ था। तो अब वो दुनिया में वापस आता है दाएं और बाएं सलाम करके। ये है नमाज। तो नमाज को एक्सरसाइज या मुशक्कत के तौर पर हमने नहीं लेना, अपने रब से मोहब्बत के इजहार के तौर पे लेना है, कि खड़े झुके बैठे हर वक्त मोहब्बत का इजहार। तो ये इतनी स्पेशल चीज़ है नमाज, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जरा परेशानी होती तो नमाज की तरफ भागते थे, क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके जरिए मैं अपनी परेशानियां, अपना दुख, अपना गम अपने रब के आगे रख दूं, उसके आगे झुक के उससे मदद तलब कर लूं। इवन सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण भी होता था तो नमाज की तरफ बढ़ते थे। तो इट मींस नमाज वो चीज है जो स्ट्रेस में इंसान को तसल्ली देती है। तो खुद सोचिए कि हम नमाज फिर कैसी पढ़ते हैं, हमारी नमाजों में तो ये सब कुछ है ही नहीं। हालांकि अगर हम नमाज को वाकई इस तरह से पढ़ने लगे तो हम इंजॉय करेंगे नमाज, हमारा दिल लगेगा नमाज में, हमें शौक होगा नमाज का। तो जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमने असल में सारी दुनिया को खैर बात कह दी है, अब मेरी अल्लाह ताला से बातें करने का वक्त है, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना खाना है ना पीना है ना बोलना है ना सोना है, और जहन कहीं और ही लग गया। और इंसान सबसे पहले क्या कहता है, सुबहाना कल्लाहुम्मा, सुबहाना क्या माने, सुबहान का पाक है, का सुबहाना क्या है ना, पाक है तेरी जात पाक है। अब पाक होने का मतलब क्या, जब आप कहते हैं ये घर पाक है, ये कालीन पाक है, अंबिया की जिंदगी पाक है, तो क्या मतलब होता है? घर पाक है यानी गंदगी से पाक है, ये कालीन पाक है यानी निजासतों से पाक है, अंबिया की जिंदगी पाक है यानी इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी गुनाहों से पाक है। तो जब हम पाक का लफ्ज बोलते हैं तो हर एक के लिए मीनिंग डिफरेंट होता है। जब हम अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, सुबहाना का अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करती हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस चीज से पाक है, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की कमजोरी से। तो क्या क्या ऐब होते हैं, क्या क्या बुराइयां या क्या क्या कमजोरियां हो सकती हैं जिनसे हम अल्लाह ताला को पाक करार दे रहे हैं, यानी शरीकों से, मददगारों से, मुशीरों से, वजीरों से, ऐबों से, बीवी बच्चों से, वालदेन से पाक, तमाम किस्म के खानदानी रिश्तों से पाक, गफलत से पाक, नींद से पाक, ऊंग से पाक, भूल चूक से पाक, मोहताजी से पाक, आजजी से पाक, थकन से पाक, आराम करने से पाक, बुखल से पाक, और जो भी मुशरिकीन के बदअकायद हैं, जो भी वो अकीदा रखते हैं मुशरिकीन, उन सब अकायद से पाक। अल्लाह तू पाक है, तेरे अंदर कोई नक्स नहीं है, तू कोई कमी नहीं है। और जब इंसान ये कह देता है तो वो बहुत बड़ी डिक्लेरेशन करता है, इसलिए कि इसके बाद वो नफा नुकसान का मालिक किसी और को नहीं समझ सकता, क्योंकि फिर तो उसने शरीक ठहरा लिया। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि गैब की बातें कोई और जानता है, क्योंकि फिर इसने इनकार कर दिया अल्लाह के सुभान होने का, क्योंकि वो तो शरीकों से पाक है, कोई और नहीं गैब की बात जानता। फिर किसी और को वो मुश्किल कुशा नहीं बना सकता, इसलिए कि मुश्किल कुशा तो वो है, उसको तो किसी की जरूरत नहीं है, वजीरों मुशीरों की जरूरत नहीं, किसी और को अपने काम डेलीगेट करने की जरूरत नहीं कि ये काम करेगा। तो जब आप सुबहान कह देते हैं ना उसको, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जेबा है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है, ये लव सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जेब देता है, किसी और को नहीं, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से पाक हो जैसे अल्लाह ताला है। तो फिर इसके बाद तमाम किस्म के शिर्क इंसान के खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद, और तमाम किस्म की ऐसी बातें जो अल्लाह ताला के लिए जेब नहीं देती, जो उसकी शान के लायक नहीं है, उन सब की इंसान नफी कर देता है, इनकार कर देता है। और सुबहानका का दूसरा एक और भी मफहूम किया गया है कि जहां पे मखलूक की हिम्मतें खत्म हो जाती हैं, इंसान की कुव्वत जवाब दे जाती है, इंसान थक जाता है, आजिज आ जाता है, वहां पर लफ्ज सुबहान आता है, अपनी आजजी के लिए और अल्लाह ताला की कुव्वत के लिए। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी और फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि तुम बताओ इन चीजों का इल्म जो आदम अलैहिस्सलाम के पास था, तो फरिश्तों ने क्या कहा था, सुबहाना का ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें नहीं कोई इल्म। उन्होंने अपनी आजजी का इजहार किया था। इस तरह इंसान सवारी पे भी सवार होता है ना, सुबहान अल्लज़ी सखर लना कहता है, तो वो अपनी आजजी का इजहार कर रहा होता है असल में कि अल्लाह मेरी कुव्वत नहीं है इस सवारी को चलाने की, ना ये मेरे इख्तियार के अंदर है, ठीक है, तूने ही इसको मुसख़्खर किया मेरे लिए। तो ये जो सुबहान का कलिमा है, ये बहुत बड़ा कलिमा है और ये मीज़ान में भी बहुत भारी है। तो जब इंसान सुबहान का अल्लाहुम्मा कहता है, ए अल्लाह तू सुबहान है, मैं तेरी पाकी बयान कर रहा हूं, तो वो एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला को कह रहा है उसकी शान में, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाहुम्मा का माना क्या है, ए अल्लाह, और ए अल्लाह, और लेकिन मीम किस चीज की है, मीम जो है ना, ये अल्लाहुम्मा का लफ्ज हम जो है आप देख लें दुआओं में कितनी दफा हम कहते हैं, तमाम जो मसनून दुआएं अल्लाहुम्मा से ही ज्यादा स्टार्ट होती हैं। तो अल्लाहुम्मा का माना क्या है? ए अल्लाह, और मीम किस चीज की है? कि अल्लाह ताला की तमाम सिफात जमा हो गई, यानी अर रहमान, अर रहीम, अल वदूद, अल मुजीब, अल वाली, अल खालिक, अल बारी, जितनी सिफात हैं वो इस मीम की वजह से जमा हो गई, अल्लाहुम्मा। ठीक है, और वह भी हमदी का, और ए अल्लाह मैं तेरी हमद बयान करती हूँ, तेरी तारीफ बयान करती हूँ। और हमद का मतलब वो क्या होता है? हर किस्म की खूबी है अल्लाह तुझ में, हर किस्म का कमाल तुझ में, सारे कमालात, सारी खूबियां तुझ में जमा है या रब। तो पहले आपने नफी के कर दी हर ऐब की, और उसके बाद आपने तमाम खूबियों का मजमुआ ये बताया कि अल्लाह तेरी जात है। तो कितनी प्यारी बात आप इस वक्त बयान करते हैं जब आप ये कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बी हमदिका। वा का माना अगर और लें तो फिर तो अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ, और ये भी कि तेरी हमद सारी तेरे लिए है, तारीफ सारी तेरी है। और वो हालिया ले सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ इस हाल में कि जो भी कमाल की सिफात है वो तुझ में है। ये वाओ हालिया हो गया। तो वाओ हालिया का मतलब क्या हुआ? कि यानी अब ए अल्लाह तू पाक है, तेरी मैं पाकी बयान करती हूँ, और जो मैं ये तेरी पाकी बयान कर रही हूँ ना अल्लाह, ये भी मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये भी तेरी तौफीक है और तेरा फजल है। अल्लाह अकबर। तो बहुत प्यारा कलिमा हम मुंह से निकालते हैं जिस वक्त हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कहते हैं, और व तबारक इस्मु का, और बाबरकत है तेरा नाम, तेरा नाम बड़ी बार बरकतों वाला, यानी जिस चीज़ पे भी तेरा नाम लिया जाए उसमें बरकत पड़ जाती है। बरकत का माना क्या होता है? बहुत ज़्यादा खैर, ज्यादती, खैर, ज्यादा हो जाना किसी चीज की, में बढ़ोतरी, यानी कोई भी चीज में बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, तरक्की होती है दुनिया की किसी चीज में भी, तो अल्लाह वो तेरी तरफ से है, तेरा नाम है ऐसा कि उसकी वजह से होती है। इसीलिए हमें कहा जाता है ना अल्लाह ताला का नाम लेके फिर कोई काम शुरू किया जाए, क्योंकि अल्लाह के नाम की भी बहुत बरकत है। अल्लाह ताला की जात तो बाबरकत है, उसका नाम भी बहुत बरकतों वाला है, उसके नाम की वजह से, उसके नाम की बरकतों से बढ़ोतरी होती है। तो इसका मतलब है कि किसी को सेहत मिलती है, या किसी को रिस्क में इजाफा होता है, या बारिशें बरसती हैं, या फसलें उगती हैं, या फूल उगते हैं, या इंसान को औलाद मिलती है, या कोई भी किसी किस्म की तरक्की मिलती है, या कारोबार में कुछ बढ़ावा होता है, तो वो कोई और नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से, ना कोई पीर करता है, ना फकीर, ना कोई वली, ना कोई नबी, ना कोई जमीनी मखलूक और ना आसमानी मखलूक। हर चीज में बरकत डालने वाला सिर्फ वो अकेला अल्लाह ही है। डॉक्टर दवा दे सकता है लेकिन शिफा डालने वाला अल्लाह है। तो ये हम सोचें कि वो रब जिसका नाम भी बड़ा बरकत है, नाम भी बरकतों वाला है, उसके नाम से चीजों में तरक्की आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, खैर आ रही है, और खैर बढ़ती जा रही है, सुभान अल्लाह। व ताला जद्दू का, और अल्लाह जद शान तेरी, ताला बुलंद है, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, तेरा मकाम बड़ा ऊंचा है। कितनी बुलंद है, कितना ऊंचा है, इसकी कोई हमें पता नहीं, हम कह नहीं सकते, हमारी अकल नहीं वहां तक पहुंच सकती। अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बुलंद है, तेरी शान इतनी अजीम है, तुझे ना बीवी की जरूरत, ना औलाद की जरूरत, ना कोई कोई वजीरों की जरूरत, ना मददगारों, किसी की जरूरत नहीं, तेरी शान खुद ही इतनी बुलंद है, तू इतना बुलंद शान वाला है, बरतर है तेरी बुजुर्गी, तेरी अजमत जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात इंसान कहता है, जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बात आपने ऐसे करके कह दी कि ला इलाहा गैरुक, नहीं कोई इला तेरे सिवा। ये आखिर में आप ये बात कह के बात को मुकम्मल करते हैं, क्योंकि ये है तौहीद। इलाह कोई भी नहीं है, इबादत के लायक को नहीं, क्योंकि ये सारी सिफात सिर्फ तुझ में है। सुबहान भी तू है, हम्द भी तेरी है, ऊंची शान भी तेरी है, बाबरकत नाम भी तेरा, और सारी सिफात किसी और में हो ही नहीं सकती सिवाय तेरे। तो ए अल्लाह, इबादत के लायक भी तू ही है। सुबहान अल्लाह, ना कोई पीर, ना अब्दुल कादिर जीलानी, ना अली हजवेरी, ना अब्दुल्ला शाह गाजी, कोई भी नहीं इबादत के लायक है। अल्लाह, इबादत के लायक सिर्फ तेरी जात है। इतना अहम पैगाम है, इतनी अहम बात है, और अल्लाह ताला को बड़ी महबूब है कि इंसान ये बात कहे कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। यही हमारा कलमा है जिससे हम नमाज शुरू करते हैं, और सारे शिर्क इससे यहीं पे ख़त्म हो गए, और इसके बाद कोई भी किसी को हाजत रवा नहीं समझ सकता। जो समझ के ये बातें बोले, फिर उसके बाद वो कहाँ किसी और के दर पे जा सकता है कि वहाँ पे झुके, किसी कब्र पे जाके वहाँ पे सज्दे करे, वहाँ पे धागे लगाए, वहाँ पे क्या करे। जिसके पास ऐसा रब है, वो उस रब को छोड़ के किधर किधर ठोकरें, किस किस दर पे जाके माथे टेकने लगा हुआ, किधर दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। वो आए ऐसे रब के पास, वो रोज नमाज पढ़ता है, नमाज से सलाम फेरते ही फिर उसके बाद कहता है फलां बाबे के पास जाना है, फलां फकीर के पास जाना है, वहां पे हाजतें पूरी होती हैं। ना ना, तुमने जिस रब की शान इतनी बयान कर दी, उसके आगे तो फिर कोई भी नहीं है। उसी को पुकारो, उसी के आगे झुको। अल्लाहु अकबर। तो ये है अल्लाह ताला की सना जो हम सबसे पहले नमाज में बयान करते हैं। कितना मजा आया ना ये सीख के, समझ के। अब आज जो आपने नमाज पढ़नी है, ठहर ठहर के पढ़नी है, जो मैंने आपको बताया है, बहुत मुख्तसर एक तशरीह की है इसकी, लेकिन मज़ा आ गया इसके बाद, और आपको मज़ा आएगा नमाज में जब आप इस तरह से सोच सोच के पढ़ेंगे। और ये महीना कुरान का महीना है, लिहाजा हमने कुरान करीम को शुरू करना है, और दो कुरान कम से कम हर एक मुकम्मल करें। एक तो वो एवरी डे हम एक पारा रोज़ाना इंशाल्लाह पढ़ेंगे, दूसरा बहुत आसान तरीका जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कुरान करीम मुकम्मल भी हो गया, वो आप ये करें कि उस्मानी मुसहफ ले लें, और आप देखेंगे हर जो पारा है इसके अंदर वो 20 पेजेस का है। 20 पेजेस मीन्स के यानी फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो आप हर नमाज के बाद फ्रंट बैक 2 पेज हो गए, फ्रंट बैक 4 पेज हो गए, यानी लीफ जो है, जो एक उसका वर्का है, 2 वर्के सिर्फ आपने पढ़ने हैं, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, 2 वर्के, दैट्स इट हर नमाज के बाद। तो 5 नमाजों के बाद आपने 20 पेजेस पढ़ लिए, और इस तरह से आपका पूरा एक पारा मुकम्मल हो जाएगा। तो 30 रोजों पे 30 पारे मुकम्मल हो जाए, और इंशाल्लाह जिंदगी रही और हम आखिरी अशरे तक पहुंच सके, तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें और ज्यादा भी पढ़ के, और जो कमी होगी इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा कर लेंगे। तो आज हमें इतना मजा आया है कि हमने अल्लाह ताला की हम्दो सना को सीखा है, तो उसी से रिलेटेड एक दुआ जो मैं आपको आज बताऊंगी, जिसमें कि अल्लाह ताला की तारीफ भी है, जिक्र भी है, और उसमें दुआ भी है, और बहुत अहम दुआ है, क्योंकि हम सब कोई सबसे बड़ी कामयाबी जो कुरान कहता है कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, फमन ज़ुहज़िह अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो है कामयाब। सिर्फ ये नहीं कहा गया जो जन्नत में पहुंच गया वो कामयाब है, जो जहन्नुम से बचा के जन्नत में पहुंच गया वो कामयाब है। तो पहली चीज क्या है, जहन्नुम से बचाओ, और इन रातों में हर रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से उन लोगों को आजाद कर देता है जिन्होंने अपने लिए जहन्नुम को समझ लें कि वाजिब कर लिया है, इतने गुनाह किए कि वो जहन्नुम उनके लिए लिख दी गई। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें जहन्नुम से आजाद कर दे। तो ये जो दुआ है, मैं आपको इसकी हदीस बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान ये कलिमात सोने से पहले पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको इतनी हमदो सना करने का सवाब देता है, इतनी हमदो सना करने का सवाब देता है कि जितनी हमदो सना अल्लाह ताला की कुल मखलूक मजमूई तौर पे करती है। सारी मखलूक मिलके जितनी हमदो सना करती है ना, सिर्फ ये कलिमात कहने से उतनी हमदो सना आप कर लेंगे। तो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी। तमाम तारीफ और शुक्र उस रब का है जिसने हर तकलीफ से मुझे महफूज रखा, रहने को जगह दी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमनी व सकानी। अल्हम्दुलिल्लाह उस जात के लिए जिसने मुझे खिलाया और पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मन्ना अलैया व अफ़दल। उस जात का शुक्र है जिसने मुझ पर एहसान किया और मेहरबानी की। और उसके बाद आप दुआ करते हैं, या आपने तारीफ अल्लाह ताला की बयान कर दी, उसके बाद दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि इज्जतिका। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी इज्जत के वास्ते से सवाल करता हूँ। अंतु नजियनी मिनन नार, के तू मुझे निजात दे दे आग से। आमीन। इन दुआओं को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, इसमें जिक्र भी है और दुआ भी है। अल्लाह ताला हमसे ये कबूल फरमाए, और इन दिनों में हर दिन कोशिश करें कि हमने सदका ज़रूर करना है, क्योंकि सदका अल्लाह ताला की गज़ब को ठंडा कर देता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करती है वो है सदका। आप सदका चाहे थोड़ी सी चीज़ का करें, लेकिन करें ज़रूर। मेक श्योर कि रमज़ान की हर दिन आप सुबह करें तो सदका दे के सुबह करें, ताकि अल्लाह ताला का गज़ब ठंडा हो जाए, उसकी नाराज़गी दूर हो जाए, जो हमारे गुनाहों की वजह से उसको हमने नाराज़ किया हुआ, तो हम इस नाराज़गी से निकल जाएं और वो हम पर मेहरबान हो जाए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।